बाबा तो सदैव कहते हैं दूध चाय आदि कोई खर्चा नहीं है, जैसा जैसा समय ऐसे ऐसे युक्ति भी करनी है। बाकी याद से ही तुम सारे विश्व को पावन बनाते, तुम खाने पीने से सारे विश्व को पावन बनाने की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि योग बन भी नहीं है और खाते पीते भी उनका सीधा है, उनका से क्या होगा और ये अवस्था नीचे गिर जाएगी। तो ठीक है कि याद से भोजन को भी शुद्ध बनाया जा सकता है, तो सारी दुनिया को भी पवित्र बनाया जा सकता है, पांच तत्वों को भी पवित्र बनाया जा सकता है, लेकिन गुरु को अवस्था भी चाहिए। तो जैसा जैसा समय ऐसे युक्ति से चल रहा, वृक्ष विहार में रहते आना जाना तो पड़ता ही, कोई से काम भी निकालना होता है और किसी से काम निकालना है और उसको असंतुष्ट कर देंगे, कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, बहुत स्थित हो जाएंगे। जो काम निकालना है इसलिए से बात और वो काम नहीं हो पाएगा, तो बाबा का मना नहीं करते हैं, कितना किसका पानी भी नहीं पियो। अगर ब्राह्मण कुल के हैं तो उनके हाथ का तो चलना चाहिए। ब्राह्मण कुल नहीं कमजोरी आ रही, ब्राह्मण अर्थात पवित्र, ब्राह्मण अर्थात जो बाप के वचन पर चलने वाला हो। ब्रह्मा मुख वंशावली है तो जो ब्रह्मा मुख से बोले वो करना पड़े, ब्राह्मण कुल वालों के पास भी पानी तक भी नहीं पीते, ऐसे भी हमारे पास बच्चे हैं। कहते हैं मैं ब्राह्मणी हूँ, हमने अपने हाथ से खाना बनाया है तो भी नहीं लेते, पानी भी नहीं पीते, तो वह दिल में कितना नाराज होती होगी, इसको दुखी करते हैं, नाराज करते हैं। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि इसको नाराज करो, अपन को एडवांस पार्टी का ऊंचा समझ लिया और उनको समझ लिया नीचा, और कोई ब्राह्मणी की आओ भगत को स्वीकार नहीं किया तो वो ब्राह्मणी तो नाराज हो जाएगी ना, बड़े अहंकारी आए ऐसे नाराज नहीं करना। अपन तो ब्राह्मण को भूषण है, उसको नाराज नहीं करना चाहिए। ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, वो भी नाराज हो पड़ते हैं। कहते हमने अपने हाथ से खाना बनाया है तो भी नहीं लेते, फ्रूट भी नहीं लेते, तो कुछ हुआ ना। इसको फिर अहंकार जय अभिमान कहा जाता है। बाप तो ऐसी शिक्षा नहीं देते, बाप तो कहते हैं जस्ट व्यवहार में रहते जरूर ऑफिसरों के पास दोस्तों के पास जाना पड़ेगा, वो ऑफर करेंगे, यहाँ भी कोई आते हैं तो तुम खातरी करते हो ना, राजी रखना चाहिए, तुमत में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो नाम बदनाम होता है। बहुत ज्यादा अहंकार नहीं दिखाना चाहिए कि हम तो बहुत परिष्कार हैं। शर्मिंदा होती है। ब्रह्मा कुमारियां देखो कितना हद करती है, प्रेम से कोई खिलाते हैं तो भी खाते नहीं, बाप भी खाते हैं, बच्चे फिर उनसे ही पीछे चले जाते। बाबा को तो बहुत आकर के प्यार से खिलाते हैं तो बाबा खा लेते हैं, बाबा भी बहुतों को खिलाते हैं, जिसकी खिलाते हैं चाय भी हाथ से पिलाते हैं, इतने सब तो बिस्की खा नहीं सकेंगे, चाय भी पी नहीं सकते बाबा, इसलिए फिर बंद कर दिया। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जा रही है, बाकी बच्चों रहना बहुत मीठा है, वो भी बाप कहते हैं कि सभी एक दो को नफरत से नहीं देगा। बाप तो बच्चों के लिए कुछ भी कहेंगे लेकिन तुम नफरत से कोई को नहीं देगी। बाप का तो काम है सुधारना, तुम्हारा काम कोई को शिक्षा देना या सुधारना, सुधारना नहीं। बड़े भाई का काम है छोटे भाई को सुधारना, इसका मतलब वो किसी को सुधारता है तो वो अपने को क्या समझता है कि हम बड़े भाई अपने मुंह मिट्ठू, कैसे पता चला कि तुम बड़े भाई हो, माला में ऊपर नंबर आने वाला है और जिसको सुधार रहे हो वो उसका नीचे नंबर आने वाला है, तो रिजल्ट निकल गया। तो बड़े भाई का काम है छोटे भाई को सुधारना, समझाना पड़ेगा। थप्पड़ लगाने की तो बात ही नहीं, समझाना होता है। ऐसी चलो के दास दासियां जाकर बन पड़ेंगे, किसके लिए बताया? ये बात किसके लिए कही? कौन बड़ा भाई? बड़ा भाई कौन है नहीं पता? अगर किसका बड़ा भाई है वो पिता है संजय का या बड़ा भाई है? तो पिता है, फिर बड़ा भाई कौन हुआ? बड़े भाई को दादा कहा जाता है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा के लिए ये बात बताई, समझाना उनको पड़े। थप्पड़ आदि लगाने की बात बड़े भाई के लिए नहीं है, बड़ा भाई छोटे भाई को थप्पड़ अगर मारता है उसका मतलब ला अपने हाथ में लेता। बड़ा भाई जैसे धर्मराज बाप बन गया, तो ब्रह्मा बाबा ने तो वैसे भी किसी को थप्पड़ आदि नहीं ना। तो बोला है ला अपने हाथ में नहीं लेना। ला किसके हाथ में रहना चाहिए? बाप धर्मराज के हाथ में। किसी को दंड देना करना ये बाप का काम है, बच्चों का काम नहीं है। सावधानी दी जाती है कल्याण के लिए। बच्चे कहाँ तंग करते हैं, बच्चे हैं कहाँ तंग करते हैं, सुधारने के लिए थप्पड़ लगा देते। कौन से बच्चे हैं? लौकिक बच्चे हैं, उनके लिए कहा कि अगर वो तंग करते हैं मानते नहीं हैं, तो सुधारने के लिए उनको कब थप्पड़ लगाए सकते हैं। ये कोई क्रोध नहीं है, मारकर बच्चों को सुधारने के लिए लकड़ी भी मार देते हैं। तुम्हारा अंदर से लक्ष्य कोई खराब लक्ष्य नहीं है, ये कोई पाप नहीं बना। मुझे अंदर से लक्ष्य है कि बच्चा सुधर जाए, तो ये भी क्रोध नहीं है। अब ये कोर्सा मेल में लिखने की दरकार नहीं। मां से बच्चे सुधर जाते हैं, मां से बच्चे सुधर जाते हैं। कोई खास आदत होती है तो मां से सुधर जाती। यहां भी बच्चों को सुधारते रहते कौन? यहां भी बच्चों को सुधारते रहते हैं बाप कैसे? मार से, मार की बात चल रही है, तो यहाँ भी बाप सुधारते रहते हैं बच्चों को कैसे? मार से। बाकी बड़े भाइयों को पहले तो अपने को बड़ा भाई समझना नहीं, तो मारने की तो बात ही समझाना है। दूसरी बात, बड़ा भाई तो कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा अपन को बड़ा भाई समझ के समझाती है। बाकी मारना करना ये भाइयों का काम नहीं है, ये तो बात धर्मराज का काम है। उदाहरण तो धर्म में का ठेका भाइयों ने नहीं लिया है, किसने लिया है? बाप ने। बैल को धान चलाने के लिए सुधारते हैं, देवताओं जैसा गुलगुल बनना है। तो बच्चों को ऐसा शिष्ट नहीं होना है, क्या कहा? ऐसा शिष्ट बच्चों को ऐसा शिष्ट नहीं होना है, माना कैसा शिष्ट हाँ प्रजापिता आपके हिसाब से क्या है? चंद्रमा माता क्या संबंध है प्रजापिता के साथ? आप चंद्रमा माता
हैं।
प्रजापिता के साथ बच्चों का क्या संबंध है?
बाप
का संबंध है। तो छोटा भाई बड़ा भाई होने की तो बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य आत्माएं हैं उनका पिता है प्रजापिता। और ये पहचान किससे मिलती है? ये पहचान तो शिव बाबा आकर के देते हैं।
बाबा एक मूल्य मिलता है, बड़ा भाई और छोटा भाई सभी मिलकर
तो था बड़ा भाई छोटा भाई, लेकिन बड़ा भाई किसको कहेंगे? जो मनुष्य आत्माएं हैं उनमें बड़ा भाई कौन और बाप कौन?
बड़ा भाई तो ब्रह्मा,
बड़ा भाई ब्रह्मा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? दादा। दादा किसको कहते हैं? बड़े भाई दादा कहा जाता है। और बाप तो बाप है, तो बाप और दादा। अभी तक ये समझते थे कि बिंदु ही हमारा बाप है, लेकिन जब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण साकार हुए ना, तो साकार ब्राह्मणों का बाप भी साकार होगा। तो वो प्रजापिता वो बाप, और जो बड़ा भाई है सबसे आगे आगे पढ़ाई करने वाला वो ब्रह्म, तो वो दादा हो गया। तो बताया कि बच्चों को इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। जो कोई को मारती करने लग पड़े सुधारने के लिए, ये तो बाप का काम है कि बच्चों को धर्मराज बाप दंड भी दे सकते हैं। तो बच्चों के चित्त नहीं होने चाहिए जिससे कोई नाराज हो जाए। ब्राह्मण है तो खाने करने में कोई हर्जा नहीं। अगर ऐसे चित्त रहेंगे तो फिर बुला देंगे कैसे? क्या इन सर्विस करने जाते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं तो फिर वो दोबारा बुलाएंगे ही? क्या तुमको मुंह देखना है उनका? یہ اچھا نہیں ہے. اچھا روحانی بچوں کو روحانی باپ دادا کا یاد چاہے گڈ مارننگ. آج کی وانی ہے 14/10/68 کی مرلی پانچ نمبر کے لیے 105 پرشن. روحانی باپ بیٹھ روحانی بچوں کو سمجھاتے ہیں. یہ واقعہ مرلی کی آدھی میں بار بار آتا ہے. کیا روحانی باپ سمجھاتے ہیں اور روحانی بچوں کو سمجھاتے ہیں, جسمانی بچوں کو نہیں سمجھاتے. جب سمجھنے والے ابھی یہاں تم بچے 15 منٹ پہلے آ کر بیٹھے. پندرہ منٹ پہلے مرلی سننے سے 15 منٹ پہلے نہیں, یاد میں 15 منٹ آ کر پہلے بیٹھے تھے. تو بابا اس کا مطلب ہے کہ 15 سے لے کر 20 منٹ کبھی کبھی کون گھنٹہ یاد میں بیٹھے. کسی روپ میں بابا نے بتایا ابھی یہاں اور تو کوئی کام نہیں ہے, باپ کی یاد میں ہی آ کر بیٹھتے ہوں. بکتی مار میں تو باپ کا پیسے کوئی کو ہے نہیں. یہاں تم کو باپ کا پریچے مل رہا ہے. کہاں سنگ میں ملے تو اصلی سنگ میں وہ کہاں ہے؟ سنگ میں وہ بات کر لے پرشوتم سنگ میں وہ کہاں کہا جائے؟ کون سے استھان پر پرشوتم سنگ میں ہوئے؟ مدھوبن میں ہی سنگ میں وہ مرلی نے بتایا ہے. باقی باقی سینٹنس میں ہاں یہاں تم کو باپ کا پریچے ملا ہے اور باپ سمجھاتے ہیں مامے کو بھی یاد کرو. یہاں مانا مدھوبن ہے تو جہاں مدھوبن ہے وہاں پرشوتم سنگ میں تم کو باپ کا پریچے ملا ہے. کس سے پریچے ملا ہے؟ پریچے کس کے دوارا ملا؟ پرشوتم سے. جو پورس ارتھات آتماؤں میں اتم ہے اس لیے مرلی میں بولا ہوا ہے نیکسٹ ٹو گاڈ از پرجاپتا. نیکسٹ ٹو گاڈ شنکر کو بھی بولا تو نیکسٹ ٹو گاڈ کرشن کو بھی بولا ہے. تو بات سمجھاتے ہیں اب ماں نے کم یاد کروں میں تم کو سبھی پاپوں سے مکت کر دوں گا. جو سمجھانے والا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں سبھی پاپوں سے مکت کر دوں گا, میں تم سبھی بچوں کا باپ ہوں. باپ کو یاد کرنے سے برسا تو آپ میں چکن یاد آنا چاہیے. کروڑوں پتی باپ ہے تو بچے کی نظر کہاں لگی ہوگی؟ کروڑ روپے پر ارب پتی باپ ہوگا تو بچے کی نظر अरब के ऊपर लगी होगी। तो यहाँ बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। यहाँ बाप क्या है? बाप सरस्ता न कहता है, जब रचने वाला है सरस्ता तो उसका वर्षा भी जरूर मिलना चाहिए। बाप विश्व का बादशाह है तो जरूर बाप से विश्व की बादशाह ही मिलना चाहिए। ज्योतिबिंदु विश्व का बादशाह बनता है, ज्योतिबिंदु विश्व का बादशाह नहीं मिलता तो बच्चों की नजर किसकी पर जाएगी? इसलिए उन्होंने कहा निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकार से वर्षा कैसे मिलेगा? मुक्ति धाम निराकार को याद किया सिर्फ निराकार तो मुक्ति धाम का वर्षा मिल जाएगा, बाकी विश्व की बादशाही का वर्षा नहीं मिल सकता। तो बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो क्या? छोटे बच्चे नहीं हो जो बाप और बाप के बनते भी तुमको पहचान नहीं है? बड़े हो, समझदार हो तो बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है उसकी तुमको पहचान है। बन लिखते हैं हम 5 मास के हैं, 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी है ना, तो रूहानी बाप समझाते हैं। यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठे, जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, बस स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। चलो लक्ष्मी नारायण जैसे न भी बन पाएंगे तो कम से कम स्वर्ग में जाने का तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। तो बच्चों को नोट करना चाहिए हम यहाँ बैठे कितना समय बाप को याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे, कौन सी बात लिखने से समझ जाएंगे? आकार बाप की बात कही जिससे वर्षा लेना वो तुम्हारे लिखने से बाप समझ जाएंगे। पहले तो ये समझ जाएंगे ये झूठा लिख रहा है कि सच्चा लिख रहा है। क्यों? सारे पोता मेल की ताल मेल देख करके, तुम्हारी रोज की चलन देख करके पोता मेल का झूठा सच्चापन भी पता लग जाता है। और दूसरी तरफ जब पता लग जाएगा कि तुम्हारा ऐसा पोता मेल है तो समझ जाएंगे कि ये क्या पद पाने वाली है। तो लिखने से बात समझ जाएंगे, ऐसे नहीं सुप्रीम सोल सिर्फ समझ जा रही है लिखने से तो जानता ही है, लेकिन पोता मेल इसके लिए लिखा जाता है साकार को जानने के लिए। तो ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है। अरे कितना समय याद में रहते हैं। वह हरेक अपने चार्ज से समझ सकते हम कितना समय याद में बैठे। बाप को बाप को याद करना है, बुद्धि कहाँ और तरफ है चली तो नहीं गई, देखना है। ये भी बुद्धि में है, अभी बाबा आ देंगे। तो ये भी याद ठहरी ना, कहाँ से आएंगे? क्लास में जब याद में बैठते हैं तो ये भी बुद्धि में रहता है कि अभी बाबा आएंगे। तो अगर ये भी याद किया कि बाबा आएंगे क्लास में तो ये भी तो याद ठहरी ना। ये नहीं कहा कि बाप सुप्रीम सो ला रहे, उनका तो आने जाने का पता ही नहीं चलता, लेकिन बोला बाबा आ रहे हैं, है ना, साकार निराकार का मेल आ देगा। तो ये भी याद ठहरी ना कितना समय याद किया, वो चार्ट में सच सच लिखना पड़े, झूठ लिखने से तो और ही पाप कर जाएगा। याद आती रही किसी दूसरे देहधारी की और ऐसे झूठ लिख दिया तो और ही बोलना पड़ेगा। समझना चाहिए, हम झूठा लिखा तो सब गुना पाप कर जाएगा तो और ही नुकसान हो जाएगा, इसलिए सत्य लिखना है। इससे तो अच्छा न लिखा होता तो ज्यादा अच्छा था, होता में लिखा जाता है इसलिए कि हम सुधर जाए, और झूठा लिख दिया तो और ही ज्यादा पाप चढ़ गया, इसलिए सत्य लिखना है। जितना याद करेंगे उतना ही विक्रम विनाश होंगे। और ये भी जानते हो हम नजदीक आते जाते हैं, इसके नजदीक आते जाते हैं, हाँ, बाप के स्वभाव संस्कार के संकल्पों के नजदीक आते जाते हैं। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा के पास कब चले जाएंगे, जब याद पूरी हो जाएगी। इसका मतलब अभी तो हम बाबा से दूर है ना, है? तो याद करने की दरकार ही नहीं। जब याद पूरी हो जाएगी तो फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, परम धाम चले जाएंगे। लेकिन गुरुदेव ने बोला है कि परम धाम को तुम बच्चों को यही इसी शक्ति पर उतार लेना है, इसी शक्ति पर तुम परम धाम को उतार लेंगे। ठिकाने कम पे में तो जो तपस्या स्थली का यादगार है कौन सा, माउंट आबू कंप्लीमेंट ऐसी यादगार है, छोटा मोटा ऐसी बात नहीं कि जैन मंदिर यहाँ नहीं है। जैसे बाहर दो मंदिर हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक काली मूर्तियों का एक सफेद मूर्तियों का, ऐसे यहाँ भी नीचे वाला सफेद मूर्तियों का ऊपर वाला काली मूर्तियों का मंदिर है। मूर्ति तो वो ही है, दिलवाड़ा मंदिर कहा जाता है तो जैन मंदिर ही, लेकिन वो बड़ा है और ये छोटा है, किंतु वो ब्राड मधुबन है और ये मिनी मधुबन है। तो आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। तो बाबा कहाँ का वासी है, परम धाम का वासी। परम धाम का वासी का मतलब है, तो फिर अभी ये तो मिली हो गया। परम धाम तो बड़े के बड़ा होता है, तो जहाँ आत्मिक स्टेज में, आत्मिक स्टेज में रहने वाले सारे बच्चों का संगठन इकट्ठा हो जाए उसे कहेंगे बात का। वो माला तो पहले बनती है, वो संगठन पहले बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है, फिर जब बाद में बन जाता है तो बन जाने के बाद ट्रांसफर करना होना है। प्राउड मत बनो, वही का यादगार है। परम धाम में जो ऊपर आत्माएं बैठी हुई है तीन लोग के चित्र में, वो धर्म पिताओं का ग्रुप अलग है अपने अपने धर्मों पर, तो कोई उनको परम धाम तो आखिरी में वो टाइम याद दिलाया कि आखिरी में जब फाइनल पेपर हो जाएगा तो याद पूरी हो जाएगी, तो हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे। पहुंच जाने का मतलब स्वभाव संस्कार के आधार पर भी, संकल्पों के आधार पर भी एक होकर हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे। अभी बाबा के पास तो है लेकिन अभी संकल्पों में समानता नहीं है। जो बाप का संकल्प वही हर बच्चे का संकल्प हो, ऐसा अभी कोई संगठन नहीं है। बाबा के पास चले जाएंगे फिर तो कोई झट में दुनिया में जाकर के पांच बजावेंगे और कोई वहां ही बैठे रहेंगे। क्या बात हुई है? कोई वहां क्यों बैठे रहेंगे और कोई झट में दुनिया में जाके पांच क्यों बजावेंगे? किस बात में नंबर वन? ऐसी क्या बात है जो वो वहीं बैठे रहेंगे मुक्ति धाम में और दूसरे जा करके वहाँ नई दुनिया में स्वर्ग में पार्ट बजा देंगे? जब बाप के पास प्रभु धाम में पहुँच गए तो बाद पुरुषार्थ है। हाँ, जरूर इनके धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं, तो उनको थोड़ा भक्ति में और भक्ति में रहना पड़े बाप के पास, ताकि ज्यादा संग करने लग जाए और पक्के सनातनी बन जाए। तो जो पेड़ के पक्की चीज को पकड़ लेंगे उनको फिर कहाँ भेज देंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग कहाँ होगा? तो परम धाम तो इसी दुनिया में हो गया, तो स्वर्ग कहाँ होगा? यहाँ ही, यहाँ माने जी दिल्ली में। अरे तू पूरा जन्म का आया हुआ है क्या? दादा की उम्र तो ज्यादा हो गई। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र तो 50-60 से ऊपर पहुंच गई होगी। हाँ, इसीलिए बुद्धि में बात नहीं आ रही है। लेकिन आप भी प्रजापिता के साथ तो जरूर रहे होंगे पूर्व जन्मों में, नहीं तो इतना ज्ञान कैसे नहीं कर सकते। अच्छा, तो कोई तो वहां ही बैठे रहेंगे परम धाम में, बाप के पास वहीं बैठे बैठे तपते रहेंगे। वहां कोई संकल्प तो उठेगा नहीं क्या? हाँ, वहां परम धाम में कोई संकल्प तो उठेगा नहीं, वो है मुक्ति धाम। संकल्पों से भी वहां मुक्ति, दुख से न्यारी दुनिया है। सुख धाम में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जितना तुम याद करेंगे उतना जिक्र मिला तुम्हें। और तुम चले जाओ शांति धाम। जो बहुत याद करेंगे वो बहुत नजदीक जानेंगे। क्या कहा रामधाम ने भी इब्राहिम पुत्र क्राइस्ट की आत्मा उसके नजदीक नहीं है, लेकिन जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा है वो नजदीक सिखाई गई है। तो वास्तव में वो कोई ऊपर की बात नहीं है। जो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की आत्माएं हैं कभी कन्वर्ट नहीं होती, वो पाप के नजदीक रहेंगे। और जो यहाँ शूटिंग के पीरियड में देखने में आ रही है कि कन्वर्ट हो जाती है, तो वो वहाँ थोड़ी कहाँ रहेगी, थोड़ा दूर रहेंगे। साकार को याद करने से होते हैं, निराकार को याद करने से तो होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते जितने देवी देवता सनातन धर्म की जो पक्की आत्माएं हैं उनके होंगे। सिर्फ निराकार को याद करेंगे तो विकल्प विनाश तो होंगे। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो स्वर्ग में आते ही थे, त्रेता में आते ही थे, उनके भी विकल्प तो विनाश होंगे, लेकिन वो याद किसको करेंगे, विष्णु को याद करेंगे, लेकिन सर्ग में नहीं याद। क्यों? क्योंकि बिंदु की याद निरंतर स्थायी नहीं रह सकते, और साकार में निराकार की याद स्थायी रह सकती है, क्योंकि 63 जन्मों की हमको आदत पड़ी हुई है किसको याद करने की, साकार को याद करने, इसलिए वो सहज हो जाएगा और निरंतर हो जाएगा। इसलिए निरंतर और सहज हो जाने के कारण दिन दूना रात चौगुना पुरुषार्थ बढ़ने के कारण वो आत्माएं स्वर्ग की पहली सीढ़ी पर पहुंच सकेंगे। लेकिन सिर्फ निराकार बिंदु को खींच करके याद करने वाली आत्माएं द्वापर की पहली सीढ़ी तक तो पहुंच जाएंगी, पहुंच सकती है, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाती। जीवन मुक्ति का वर्षा ब्रह्मा के थ्रू मिलता है, क्या साकार के थ्रू मिलता है, वरना जीवन मुक्ति का वर्षा मिल नहीं सकता। तो अकेले साकार को याद करने से जीवन मुक्ति हो सकती है, लेकिन फिर वो आत्माएं जो साकार को ही सिर्फ याद करेंगी उनको माया बहुत खाएगी, तो टिक नहीं सकेंगे, और जब टिकेंगी नहीं सकेंगे तो किया हुआ कर्म सारा व्यर्थ चला। तो सिर्फ साकार को याद करने में खतरा बहुत है, क्या खतरा ज्यादा है। जो बहुत याद करेंगे तो नजदीक आ रहेंगे, उनकी ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी, चार्ज रखने में फायदा ही फायदा है। बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण उनको लिखने में लज्जा आती है, इसलिए चार्ज नहीं लिखते, उनको लज्जा आती रहती है कि बाबा क्या कहेंगे, कहीं मुरली में न सुनाए दें, मुरली में सुनाए देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की बात क्या है, दिल अंदर हरेक समझ सकते हैं, हम याद करते हैं भैया नहीं याद करते हैं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करते रहो तो इससे कल्याण होगा, जब तक बाबा आवे इतना समय जो बैठे इसमें याद कितनी रहे, उतने समय का नोट कर लो क्या, जब तक बाबा आवे। कहाँ आवे? हाँ, जब तक बाबा आवे, मानो एक घंटे के लिए आया, तो इतना समय जो बैठे इसमें याद कितना रही बाबा की, और बाहर की दुनिया में बुद्धि कितनी भटकी, यानी दूसरे किसी देहधारी को कितना याद किया। तो बाहर बुद्धि नहीं भटकती है, लेकिन बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं उन्हीं में से किसी देहधारी की याद करती रहे और बाबा की मुरली में सो जाए, ये भी तो हो सकता है। तो चार्ट रखना चाहिए, याद का चार्ट कैसे रहता है, जब बाबा आते हैं तो चार्ट कैसे रहता है, फर्क देखना चाहिए। क्या फर्क देखना चाहिए? इतना समय बाबा रहे और इतना समय हमने याद किया, तो कितना फर्क पड़ा, कितना अंतर पड़ गया। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से और ही याद पक्की हो जाती है। सगाई हुई तो दिल में आता रहेगा कि हम पति के घर जाएंगे और यह करेंगे, तो याद ही है। ज्ञान मिला, निश्चित तो हो गया, दूर बैठे भी बिना फोटो देखे भी निश्चित तो हो जाता है, सगाई तो हो जाती है, लगन तो लग गई। क्या स्मृति का टीका तो चल गया। कन्या का मिसाल दिया कि कन्या के दिल में आता रहेगा कि हम पति के घर जावेंगे, यह करेंगे। क्या दिल में आता रहेगा? यह करेंगे। तो ऐसे ही बच्चों के दिल में भी आना चाहिए क्या, कि बाप को हमने पहचान लिया या जिस किसी भी संबंध से जान लिया पहचान लिया, तो उस संबंध की अनुभूति अब हम लेंगे। वो कन्या तो चित्र तो पहले देखती नहीं, जब सगाई होती है तो उससे पहले तुरंत तो चित्र देखती नहीं है, बिगड़ देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। इतने समय के बाद हमारी शादी हो जाती, एक बार देखा तो फिर वह सूरत भी अंदर छप जाती। एक बार जब देख लेगी, जाना तो है ना शत्रुघ्न, तो जब पहुंच जाएगी तो सूरत तो देखने में आएगी, फिर क्या होगा, फिर वो दिल अंदर सूरत छप जा देगी। अभी तुम बच्चे तो तुम बच्चे कहते हो शिव बाबा हमारा वेद का बाप है, तुम तो कहते हो शिव बाबा हमारा वेद का बाप है, मतलब देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो वह बाप ही है। संबंध से न्यारा नहीं है क्या, संबंध से न्यारा नहीं है, मन से तो कहते हैं वह बेअंत है, नाम रूप से न्यारा है, लेकिन उनको तो पता नहीं है, उसका तो नाम भी है और उसका रूप भी है। अच्छा, फिर नाम रूप से न्यारा है तो पूजा क्यों करते हो, नाम रूप से न्यारे की पूजा कैसे हो सकती है, उसको तो याद किया जा सकता है, बिल्लू को क्या करेंगे? बिल्लू को तो याद कर सकते हैं, अगर उसका नाम रूप है तो जरूर देखने में भी आएगा तो संबंध जुटेंगे। हाँ अच्छा, फिर पूजा क्यों करते हो? नाम रूप से न्याला है ऐसा कहते हो, उसको याद क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारा, बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। अगर कोई चीज है क्या, अगर कोई चीजी है तो नाम रूप से न्यारी नहीं हो सकती। चीज तो साकार होगी ना, जब उस चीज को देखा जाता है तब उसका वर्णन होता है, अगर देखे ही नहीं तो उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो ज्योति विष्णु शिव वो भी किसी तन में प्रवेश करके आता है, उसको देखा जाता है, समझा जाता है और फिर उसकी महिमा का वर्णन किया जाता है। आकाश को भी देखते तो है ना, बेअंत कहने सके। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, भगवान को बेअंत थोड़ी याद कहेंगे, बेअंत नाम रूप से न्यारा कहने से तो वह याद भी नहीं पड़ सकता। अगर उसको बेअंत कहते हैं, नाम रूप से न्यारा कहते हैं तो उसकी याद भी नहीं आ सकती। ये भगवान कहने से झट उनकी याद आती है, तो जरूर कोई चीज है। अभी तुमको मालूम पड़ा है वो हम आत्माओं का बाप है, आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जा सकता। तो जब आत्मा को भी देखा नहीं जा सकता तो परमात्मा को भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन बुद्धि से समझा जाता है कि आत्मा इस प्रकार का पार्ट बजाने वाली है, तब उसका वर्णन होता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी जैसे आत्माओं का वर्णन होता है, उसको एक्टिविटी को समझते हैं, ऐसे परमात्मा की भी एक्टिविटी को समझा जाता है, जाना जाता है, लेकिन आत्मा को आंख से नहीं देखा जाता। सभी आत्माओं पहले की बात है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो वो बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं, आगे ये मालूम नहीं था कि वो पढ़ाते भी हैं, कृष्ण का नाम डाल दिया था। कब अभी इस जन्म में तो नहीं डाल दिया कृष्ण का नाम है। हाँ यहाँ भी तो सूचन दी जब में कृष्ण का नाम आता था तो ब्रह्मा का नाम डाल दिया था कि वो ही पढ़ाने वाला है। कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, लेकिन बाप को तो सिर्फ बुद्धि के तीसरे नेत्र से समझा जा सकता है, इन आंखों से उसको देख नहीं सकते। कृष्ण को इन आंखों से देखा जाता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा तो कह नहीं सकते। इनके लिए कृष्ण के लिए कृष्ण कब ऐसे कहेंगे क्या नहीं कि माँ मैं तो याद करूं, कृष्ण कब ऐसे नहीं कह सकते कि माँ मैं कम याद करो, क्यों? क्योंकि उनको भी किसी को याद करना होता है तब उनकी आत्मा भी पवित्र। ये तो سمجھا رہے ہیں نا, ان کو بھی بابا نہیں کہیں گے. ماتا ہے تو کتنے کو بچہ سمجھ کر کے گود میں اٹھائے لیتی ہیں, جنماشٹمی پر چھوٹے کتنے کو ہی بلاتی ہیں. کیا سدر تو چھوٹا ہی ہے؟ پھر رات ملاس بھی کراتے ہیں تو ضرور تھوڑا بڑا ہوا ہوگا, تب تو رات کرے گا. رات من رات کسے کہتے ہیں؟ ڈانس کو. اور بلاس کس کو کہتے ہیں؟ نام ہی ہے بھوگ بلاس. کالے منہ والا ہے کہ گورے منہ والا ہے؟ بلاس میں تو کالے ہی ہوتے ہیں, آپ سمجھتا ہے نا؟ پکا جلدی بتا دیتے. پھر ان سے بڑا ہوا, بس کیا ہوا, کہاں گیا, یہ کس کو بھی پتا نہیں. رات بلاس کیا, پھر اس سے بڑا ہوا, کہاں گیا, کیا ہوا, یہ کسی کو پتا ہی نہیں. دوسرا سدیو چھوٹا شریر تو نہیں ہوگا نا, یہ بچہ ہی بنا رہے, کبھی ایڈلٹ نہ بنے. سدیو تو چھوٹا نہیں ہوگا نا, کچھ بھی خیال نہیں کرتے ہیں. بھکتی مارگ میں کچھ بھی خیال نہیں کرتے, یہ پوجا آدھی کی رسم چلی آتی ہے. ستنی کی ایسے ہی پوجا کرتے رہتے ہیں بنا جانے سمجھے. جان تو کوئی میں ہے نہیں, دکھاتے ہیں کنسپوری میں جنم لیا, جنم کہاں لیا, کنسپوری میں. ابھی کنسپوری کی تو بات ہی نہیں ہے, ابھی مانے کب. ماؤنٹ آبو, ماؤنٹ آبو ابھی کہیں گے. ابھی سنسپوری کی تو بات ہی نہیں, سنسپوری تو کلیوگ کو کہا جاتا ہے. اور کشنپوری ستیوگ کو کہا جاتا ہے, تو سنسپوری کی بات تو خلاص ہوتی. جنم کہاں ہوتا ہے, کنسپوری میں ہوتا ہے یا کشنپوری میں؟ شاستروں میں جس کشن کی یادگار ہے اس کا واسطو سے جنم کہاں ہوتا ہے؟ اس کا جنم تو کنسپوری ہوتا ہے. دواپر میں جنم ہوتا ہے یا کشنپوری جنم ہوتا ہے؟ تو کنسپوری ہوئی یا کشنپوری ہوئی؟ ہاں, تو ابھی کنسپوری کی تو بات ہی نہیں. جب جنم ہوا تھا تب ہوا تھا, ابھی کنسپوری کی تو بات ہی نہیں. کوئی کا بھی وچار نہیں چلتا ہے کسی کا کیا ہوا. بس لوگ تو کہہ دیتے ہیں کتنا حاضر حضور ہے, پھر لوگوں کو اسنان بھی کراتے ہیں, کھلاتے بھی ہیں. اب کھانے والا اور اسنان کرنے والا حاضر حضور کیسے ہوگا؟ ہر جگہ ویاپک کیسے ہوگا؟ ابھی وہ کھاتا تو ہے نہیں. کون کرشن؟ ابھی وہ کھاتا تو ہے نہیں, لکھتے ہیں. ہاں نہیں, رکھتے ہیں مورتی کے سامنے اور خود ہی کھا جاتے ہیں. بھوک لگاتے ہیں تو رکھتے ہیں مورتی کے سامنے اور خود ہی کھا جاتے ہیں. یہ بھی بھکتی مارگ ٹھگت مارگ ہے. مورتی کے سامنے صرف رکھ دیتے ہیں, وہ کھاتی نہیں ہے, और खा जाते हैं खुद। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वो तो खाता ही नहीं है।
ये भोग की बात नहीं है,
है?
ये भोग की बात नहीं जो लगाते हैं।
श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, है? क्या स्वीकार करते? स्वीकार करना मन ले लिया ना, है? काय के लिए ले लिया? रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद ही खा जाते हैं। जड़ मूर्ति होती है या चैतन्य मूर्ति होती है? वो तो जड़ मूर्ति होती है, तो जड़ मूर्ति के सामने रखते हैं तो जड़ मूर्ति खाए तो सकती नहीं है। भावना भावना, लेकिन अंधश्रद्धा अंधविश्वास तो नहीं है, वो तो है क्योंकि जड़ मूर्ति है। और जब वो चैतन्य में मिल जाए तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास कहेंगे? अगर वही आत्मा चैतन्य में हम बुद्धि से समझ लें कि इस तन के द्वारा, चैतन्य तन के द्वारा वही आत्मा से हमारा मिलन हो रहा है, तो हम उसको अंधश्रद्धा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो यही अंतर बताने के लिए ये बात बोली जा रही है। रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद ही खा जाते हैं। यदि भक्ति मार्ग सड़क मार्ग हो गया, मूर्ति के सामने रखना और खुद खा जाना, और पैटर्न से हो तो उसमें कोई सड़क मार्ग की बात नहीं। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वो तो खाता नहीं है, खाता कौन है? बच्चे पुजारी और भक्त लोग खा जाते हैं, खुद ही खा जाते हैं। इस पर तुम्हारा गीत भी है, देवियों की पूजा में भी ऐसे ही होता है। देवियों की जड़ मूर्ति को खिलाते हैं, वो तो खाती नहीं, और भक्त खुद खा जाते हैं। खुद ही देवियाँ बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर पैदा करते हैं, फिर धो देते हैं। कपड़ा आदि जो पहनाते हैं वो फिर निकालते नहीं, उसको भी, कपड़ों को भी, गहनों को भी उसी के साथ डुबो देते हैं। यादगार कहाँ की है? संगम इसकी यादगार है, अपने बीवी बच्चों को नहीं खिलाएंगे, उन जड़ मूर्तियों को जिनमें कोई गुण नहीं उनको खिलाएंगे, और आव भगत करेंगे, मकान भी बना कर देते हैं, कपड़े भी अच्छे से अच्छे पहनाते हैं, और फिर जब भगवान का पाठ प्रत्यक्ष होता है तो फिर उनको ले जाकर समुद्र में डुबो
देते।
सारी ही रस्म रिवाज सिर्फ अकेले भोग की क्या? सजी सजाई ही डुबो देते क्या? सजी सजाई ही डुबो देते हैं, ऐसे नहीं जो उनका कपड़ा उतार कर डुबोते हैं। कपड़ों के साथ ही डुबो देते, फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ आया वो उठा ले। क्या वहाँ है बहुत लेने वाले? हाँ, डुबोते समय तो जिसको जो हाथ आया उसने हथियार ली, कोई को तो सारी देखने में आती होगी, यानी मूर्ति टूटती फूटती नहीं है, सारी की सारी देखने में आती, कोई टूट फूट करके घूमती हो जाती होगी, टूट गई माने नीचे उखड़ गया, उखड़ गया तो बिल्कुल घूम ही हो जाती। तो ये अंधश्रद्धा की पूजा आदि तो अभी तुम्हारी छूट गई, अभी तुम ऐसी कोई देवी की अंधश्रद्धा युक्त तो पूजा नहीं करेंगे। तुम तो जानते हो भक्ति मार्ग में ये देवियों की मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा की बनाते हैं, ये तो हमारी मम्मा है, वो तो मूर्तियां बनाते हैं, मेरे मलाकड़े होते हैं उनमें मूर्तियां बनाते रहते हैं, हम समझते हैं ये तो हमारी मम्मा है। अभी तुमको पता पड़ा है ना, अक्सर करके देवियों की पूजा होती है, नारायण की मूर्ति कब ऐसे नहीं बनाते होंगे क्या? मनने वाले जो मनुष्य हैं वो किसकी मूर्ति बनाते हैं? देवियों की मूर्ति बनाते हैं। नारायण की मूर्ति बनाना कोई मनुष्यों की बस की बात नहीं है। नारायण की मूर्ति कौन बनाने वाला है? कौन बनाता है? बाप स्वयं नारायण की मूर्ति बनाता है, उससे शिविरों से संगाने वाला और कोई, ज्ञान रत्नों से सजाने वाला और कोई है नहीं, वो भी कुछ देवियों की जाति पूजा होती है, लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी है यहाँ बैठी है ना, कौन? ब्रह्मा, जिसको ब्रह्मपुत्रा या ब्रह्मपुत्री भी कहते हैं, समझेंगे ना, इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी हुई है, जिसको ब्रह्मपुत्री या ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, समझेंगे ना, इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। किसके लिए समझेंगे? जो यहाँ बैठी है, ऐसा वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी बातें शास्त्रों में तो आ नहीं सकती समझाने के लिए, इन बातों का रहते तो बात ही समझाते। तो ये है प्रैक्टिकल एक्टिविटी, तुम बच्चों को अभी ज्ञान है इस बात का, भक्ति मार्ग का भी तो ज्ञान मार्ग का भी समझते हो। सबसे जाति चित्र बनाते हैं आत्माओं के, सबसे जाति चित्र किसके बनते हैं? आत्माओं के। कौन से चित्र हैं आत्माओं के? शालिग्राम। रुद्र यदि रखते हैं तो अलग अलग शालिग्राम बनाते हैं, देवियों की कब्र लाख लाख चित्र नहीं बना देंगे, लेकिन शालिग्रामों के एक एक लाख चित्र बनाते हैं, यानी गोल गोल लिंग बनाते हैं। वो तो जितने पुजारी होंगे उतनी ही देवियां बनाते होंगे, लेकिन रुद्र यज्ञ में लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाते हैं। देवियों की हर एक बनावेगा तो एक एक ही बनावेगा, वो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाएगी, बनाने का कोई मूल कार्य नहीं होता है, वो सारे नाम तो बनते ही रहते हैं। और बेटियों की स्थिति अपने जब जब नौ देवियों का दिन होते हैं तब, यानी उनकी खास समय पर पूजा होती है,